اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اذان محترم مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا سوگواران آل محمد جس سے عنوان کا آغاز کل ہوا تھا اسی عنوان گفتگو پر آج بات کو کچھ اور آگے بڑھایا جائے. کل تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کر اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، اس کائنات کے اندر بھیجا اور ہدایت کے جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی وہ یہ رکھتے ہیں. تصرفات تو اختیارات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کیا ہیں، اس کے اعتبار سے کچھ گفتگو کل ہو پائی تھی. آج کی حد تک جو ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ علم ائمہ اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے بہت زیادہ گہری بات اور بہت مشکل نہیں، جتنا ممکن ہوگا آپ کے لیے آسان کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. جیسا کہ آپ نے سرنامہ سخن کے اندر یہ سماعت فرمایا کہ ہم نے سورہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان 12 ہے، 12 نمبر کی یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی، کہ جس میں ارشاد رب ذوالجلال ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیئن احصیناہو فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا، رکھ دیا، سمو دیا، کل شیء احصیناہو فی امام مبین، امام مبین کے اندر اس کو ہم نے رکھ دیا کل شیء. سورہ نمل کی ایک آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر انشاءاللہ آگے کچھ دنوں میں، ایک آدھ دنوں کے اندر کچھ مفصل گفتگو ہوگی. حضرت نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے عنوان پر اور ان کے اختیارات اور اہل بیت اطہار کے کیا اختیارات ہیں اس پر گفتگو ہوگی، لیکن آج کی حد تک فقط اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے جس کے اندر حضرت نبی اللہ جناب سلیمان علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمنا منطق الطیر وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ وَذَلِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ يَا إِنَّهُ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. جناب سلیمانی عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں منطق الطیر یعنی کہ پرندوں سے گفتگو کرنے، پرندوں کی زبان سکھائی، پرندوں کی لینگویج سکھائی. عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، منطق الطیر کیا؟ پرندوں کی زبان، پرندوں کی لینگویج، پرندوں کی لغت سکھائی. اور وَأُوتِنا مِن كُلِّ شَيْء اور پروردگار عالم نے کل شے میں سے، ہر شے میں سے، من یعنی کہ تبعیز باز، من کل شے میں سے کچھ. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَأُوتِنا مِن كُلِّ شَيْء اور اس نے ہمیں عطا کیا یا ہمیں عطا کیا گیا، ہمیں دیا گیا، ہمیں ملا من کل شے، کل شے میں سے تھوڑا سا، بعض. ذالکہ ان ذالک لہو الفضل المبین, اور یہ جو ہے یہ پروردگار عالم کا کھلا ہوا فضل ہے. ذالک لہو الفضل المبین, یہ پروردگار عالم کا کھلا ہوا فضل ہے, جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا کرے. کیا کہا گیا کہ ہمیں منطق الطیر سکھائی گئی, پرندوں کی زبان, واوتینا من کل شے, اور ہمیں عطا کیا گیا کل شے, ہر شے میں سے کچھ. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب سلیمان کہ یہ پروردگار عالم کا فضل مبین ہے, کھلا ہوا فضل ہے, وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے. یہاں پر رک کر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ متعلق ہے گریہ کرنے کے اعتبار سے کہ جب ہم روتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایک آنسو میں گریہ کرتے ہو, یعنی ایک آنسو کے بدلے تمہیں جنت مل جاتی ہے. اس اعتبار سے میں ایک جملہ بالکل ود ان دی بریکٹس, آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ تو چلے نہیں ہیں, یام اعظم ہیں, لہذا اس بات کا ذکر تو ہونا بھی چاہیے. البتہ ود ان دی بریکٹس رہتے ہوئے میں ایک جملہ معترض عرض کروں گا اور پھر ہم اسی آیت کی طرف انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. کیوں کہا اللہ کا فضل ہے اور عدل نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب بات عدل کی ہوتی ہے تو استحقاق دیکھا جاتا ہے بندے کی کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی چیز کا بندہ ڈیزرونگ ہے, اس کا حق کتنا ہے, وہ کتنی چیز کا مستحق ہے کہ اسے دی جائے. فضل کے اندر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے, عدل میں دیکھا جائے گا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے, فضل میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے. فضل تو صاحب فضل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جتنا بڑا صاحب الفضل اتنا ہی بڑا فضل. اب ذرا سوچ لیجئے کہ اگر فضل کرنے والی ذات انسانوں کی ہو تو یقیناً عطا کے اندر فرق آئے گا, لیکن اگر فضل کرنے والی ذات, صاحب الفضل ذات خود رب ذوالجلال ہو جائے, خود پروردگار عالم ہو جائے, تو وہ کس طرح سے کھل کر فضل کرے گا, کتنا کھل کر عطا کرے گا, کتنا بے حساب دے گا, یہ اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء وہو واللہ ذو الفضل العظیم, سورہ جمعہ کی آیت. یہ جس کے اندر کیا عرض ہو رہا ہے کہ یہ تو بھائی اللہ کا فضل ہے اور وہ جس پر چاہے فضل فرمائے, وہ تو صاحب فضل عظیم ہے, بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. تو فضل کے وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو بندہ سامنے ہے یہ مستحق ہے بھی, یہ ڈیزرو کرتا بھی ہے کہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے, بس دیے جاؤ, بس عطا کیے جاؤ, اسے فضل کہتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے میں دو مزدوروں کو اپنے گھر بلاؤں اور دونوں کی ایک کام کسی خاص کام پر دروازہ چینج کرنے کے لیے مزدوری رکھ دوں 10-10 روپے, دونوں کو طے کروں کہ بھائی آپ یہ دروازہ مجھے لگا دیں, اور دونوں آئیڈیل کنڈیشنز کے اندر ہیں, دونوں ہی مزدور بالکل ایک جیسی صحت کے ہیں, دونوں دروازے بالکل ایک جیسے دروازے ہیں, ان کا ڈیزائن, ان کا ایریا, ہر چیز ایک جیسا ہے, اور ان دونوں کی میں نے مزدوری اسی لیے 10 روپے طے کی, دونوں کی برابر مزدوری. مگر ہوا یہ کہ جب دونوں نے کام ختم کر لیا تو ایک کو خوش ہو کر میں نے 12 روپے دی اور ایک کو جو میں نے طے کیا تھا 10 روپے وہی دیے. سوال اس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 کی جگہ 8 کیوں دیے, عدل ہی نہیں کیا آپ نے, عدل کا تقاضا یہ تھا کہ 10 روپے تو دیں. لیکن اگر کوئی خوش ہو کر 12 روپے دے رہا ہے تو اس میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے بھیا ٹپ کیوں دی, ٹپ دینے پہ کوئی سوال نہیں ہوگا. اور کتنی بھی ٹپ دے دیں آپ, مزدوری 10 روپے ہے, آپ 10 روپے اور نہیں 50 روپے دے دیں ٹپ, کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے بھائی یہ ٹی آئی پی ٹپ ہے, یہ کیا ہے, یہ میں فضل کر رہا ہوں, یہ میں خوش ہو کر اسے عطا کر رہا ہوں. لہذا اس پر سوال نہیں ہوگا کہ فضل کیوں کیا, اس پر سوال ہوگا کہ عدل کیوں نہیں کیا. اب آ جائیے, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو آتے ہیں, تو یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, سرکار امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے وجبت لہ الجنہ. اور پھر کہیں پر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی روئے امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں جناح الذباب मक्खी के पर के बराबर भी अगर उसकी आंख नम हो जाए, गीली हो जाए, वजबत लहुल जन्ना, बल्कि माजरत उसके गुनाहों को, तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, चाहे वलऊ बेमकदार जबदिल बहर, पानी के अंदर, समंदर के पानी के अंदर पैदा होने वाला झाग, अगर उस झाग के बराबर भी उसके गुनाह है तब भी सारे माफ कर दिए जाएंगे। एक तरफ क्या है, मक्खी के पर के बराबर आग गीली हुई, दूसरी तरफ क्या है, समंदर के पानी में मौजूद झाग। एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है। इतने इतनी हम इसे कह रहे हैं ना, इतने कम लोग जो ईमान नहीं रखते हैं वो लोग कहते हैं इतनी कम, इतनी कम कीमत पर परवरदिगार अपनी जन्नत क्यों बेच रहा है कि भाई इतना सही तो आंसू है, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, बस ये ना देखो कि कितना सा आंसू है, ये देखो कितने बड़े हुसैन के लिए ये आंसू निकला है। ये देखो कि चीज जितनी बड़ी हस्ती से मंसूब हो जाती है उसकी कदर और कीमत उतनी ही बड़ी हो जाती है। लिहाजा एक बात तो ये हो गई कि आपने अपनी जन्नत इतनी सस्ती क्यों बेची। भाई आप ये समझ रहे हैं कि ये आंसू सस्ता है, लेकिन ये आंसू सस्ता होता अगर मैंने अपनी किसी मुश्किल के अंदर ये बहाया होता तो फिर तो कोई कीमत ही नहीं होती इसकी, बल्कि ज्यादा आंसू बहाना तो बुरा भी समझा जाता कि भाई दुनियावी चीज के लिए आंसू बहाए जा रहे हो। लेकिन अगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लिए ये आंसू निकला है तो याद रखना ना फकत ये कि ये कीमती हो जाएगा बल्कि तुम्हें जन्नत दिला जाएगा एक आंसू। अब ये तो आंसू की बात है, अब मैं जाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम के पसीने की क्या बात करूं, वो अभी मैं बात शुरू करूंगा तो फिर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, मैं तो विद इन द ब्रैकेट चल रहा हूं अभी। बस इतना समझ लीजिए कि परवरदिगार आलम का फजल है, जाले का फजल उल्लाह होती है मैशा, वो जिसे जितना चाहे फजल अता करे। और अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह की जन्नत उसने सस्ते में बेची है तो फिर आप ये बता दीजिए कि अपनी नमाज रोजों पे एतबार करते हुए जो जन्नत हम हासिल करने वाले वो कौन सी महंगी खरीदी है। आप कैलकुलेट कर देख लीजिए कि इंसान की तकरीबन 60 साल की जिंदगी के अंदर हर साल अगर वो, और अगर 60 साल की जिंदगी के अंदर भी वो 60 साल के जो 15 साल हटाकर है जब वो सिन बुलूगत को पहुंचे, उसके बाद अगर 60 साल रोजे रख रहा है तो हर साल 30 रोजे रख रहा है, 1800 रोजे अगर उसने पूरे जिंदगी के अंदर रखे हैं वाजिब रोजे, तो उन 1800 रोजों के इवज जो उसको जन्नत मिल रही है वो 1800 दिनों के लिए मिल रही, 1800 महीनों के लिए मिल रही, 1800 साल के लिए मिल रही, नहीं 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 नहीं, हुम फीहा खालिदून, वो फिर उस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। तो अगर 1800 ही रोजों के एवज परवरदिगार आलम की इतनी बड़ी जन्नत हमेशा के लिए मिल रही है, इनफाइनाइट ईयर्स के लिए मिल रही है, तो फिर तो ये सौदा भी सस्ता ही है, ये भी कोई महंगा सौदा तो नहीं है। तो अल्लाह ने यहां पर भी अपनी जन्नत सस्ते में ही बेची है। और याद रखिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर हम और आप जन्नत फिरदौस अल्लाह की जन्नत की कीमत अदा करने की कोशिश करें तो हमारी इबादतों में इतनी जान इतनी ताकत नहीं है, हमारे रोजों का इतना कमाल नहीं है, हमने अपने रोजों को और नमाजों को नहीं मालूम क्या समझ लिया। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, ये परवरदिगार आलम का शुक्र है, उसका एहसान है, उसका फजल है कि वो फिर भी कबूल करता है, वो हमें फिर भी अता करता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल और इस रजा और उम्मीद का सबसे बड़ा दरवाजा है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ात। लिहाजा कोई हरगिज ये जहन के अंदर शक ना लाए कि एक आंसू के बदले जन्नत कैसे मिल रही है। इस आंसू को ना देखो, ये जिससे मंसूब हो रहा है उसे देखो, और इंसान अपने काम को ना देखे उसके फजल को देखे, ये उसका फजल है जिसे जितना चाहे दे, वो कम दे रहा है तो भी उसकी मर्जी, ज्यादा दे रहा है तो भी किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्यों अल्लाह उसमें ज्यादा दे रहा है। अगर तू चाहता है कि तुझे भी मिले तो आ जा, अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब के नवासे हुसैन पर ऐसे क्रिया कर ले कि जब भी तू मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत सुन तो तेरी आंखें नम हो जाए, तेरा दिल नरम हो जाए, और फिर परवरदिगार आलम का करम खास तेरे भी शामिल याद हो जाएगा। लिहाजा क्या कहा जा रहा है, उल्लिमना मंतिकत तैर व ऊतीना मिन कुल्ले शय, मिन कुल्ले शय की बात हो रही है, और कुल शय यानी जनाबे सुलेमान हो गए मिन कुल्ले शय वाले, और कुछ ऐसी जाते हैं कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने कुल शय अता की है। जनाबे सुलेमान को मिन कुल्ले शय अता किया, اوتینا و اوتینا من کل شے وذالک لہو الفضل المبین, اور یہ اللہ کا فضل مبین ہے. من کل شے, کون ہے کہ جسے کل شے عطا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شے احسنہ فی امام مبین, کل شے کو ہم نے رکھ دیا ہے امام مبین میں, اسے احصا کر دیا ہے, اسے پوشیدہ کر دیا, چھپا دیا امام مبین میں. وکل شے احسنہ فی امام مبین. اور آ جائیے اس کے لیے ہم حدیث غدیر, خطبہ غدیر کی طرف چلیں, کہ جس خطبے کے اندر کائنات کے رحمت نبی حضور سرور کائنات حبیب خدا رحمت دو جہاں رحمت کل جہاں سردار انبیاء ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں, کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے مجھے عطا نہ کیا ہو, کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو خدا نے مجھے نہ دیا ہو, اور ہر وہ علم جو خدا نے مجھے دیا ہے میں نے اپنے وسیع و جانشین علی کے سپرد کر دیا ہے, اور اب ہر وہ شے جو میں جانتا ہوں وہ علی جانتے ہیں, اور وہ امام مبین ہیں. یہ خطبہ غدیر کا ایک اقتباس اور ایک اس کا ٹکڑا. تو آ جائیے, شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل فرمائی. ایک دن رسالت ماب تشریف فرمائے اور کچھ اصحاب رسول اکرم کے ساتھ موجود ہیں, یہاں تک کہ رسول اکرم پر وہ آیت نازل ہوئی کہ جو آیت اس وقت زیر بحث ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 12, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وکل شیئن احصیناہ فی امام مبین. یہ آیت آئی, اور اس آیت کے بارے میں سوال لے کر آئے وہ اصحاب اور پوچھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں کل شیئن احصیناہ فی امام مبین میں امام مبین سے مراد تورات ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, تورات اس سے مراد نہیں, اور خاموش ہو گئے. پھر دوبارہ سے موقع ہوا تو پھر سے ایک سوال ہوا کچھ توقف کے بعد, یا رسول اللہ کیا اس آیت کے اندر جو امام مبین ہے اس سے مراد ضرور ہے؟ حضور سرور کائنات نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا گیا, کیا یا رسول اللہ اس آیت کے اندر کل شئن احسنہ فی امام مبین میں امام مبین سے مراد کتاب انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں حجرے کے اندر یا جہاں پر حضور تشریف فرما تھے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ, مولا امیر ممکنات حلال مشکلات مولا کائنات آقا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مولا تشریف لائے. جیسے ہی مولا تشریف لائے اب حضور سے پوچھنا نہیں پڑا, حضور نے کہا تم کچھ سوال کر رہے تھے نا کہ امام مبین, وہ دیکھو علی آ گئے. یہی ہے کہ جو امام مبین ہے, اور اسی کے سینے میں پروردگار عالم نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ ہیں, وہاں پوچھ رہے تھے تورات ہے نہیں, انجیل ہے نہیں, زبور ہے نہیں, خاموشی ہو گئی. مولا کائنات ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, رسول اللہ نے خود اشارہ کر کے بتایا تم پوچھ رہے تھے امام مبین کے بارے میں, وہ جو آ رہا ہے اسے غور سے دیکھو, یہی ہے کہ جو امام مبین ہے جس میں پروردگار عالم نے ہر علم کو رکھ دیا ہے, ہر شے کے علم کو رکھ دیا ہے, یہ مولا کائنات ہے. تو ایک روایت اور ملتی اس طرح سے کہ شیخ توسی نقل کرتے ہیں عمار یاسر سے, اور عمار یاسر نے یہ کہا کہ میں ایک دن مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا, اور مولا جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے, میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا, اور جب ہم ایک وادی میں پہنچے کہ جس وادی کا نام تھا وادی نمل, نمل کیسے کہتے ہیں؟ نمل کہتے ہیں چوٹی کو, اور اسی نام سے پورا کا پورا سورہ قرآن کریم کتاب مبین میں موجود ہے, سورۃ النمل. سورۃ النمل کے اندر वादी नमल के अंदर पहुंचे जनाब अम्मार, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ पहुंचे। जनाब अम्मार ने एक मरतबा जब देखा कि हम वादी नमल में पहुंचे, चूंटियों की वादी में पहुंचे, तो देखा कि बहुत सारी चूंटियां वहां पर मौजूद हैं। जनाब अम्मार ने एक मरतबा रुक कर मौला अमीर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन, या अबुल हसन मौला, कोई है ऐसा कि जो ये बता सके कि इन चूंटियों की तादाद कितनी होगी? अब इतनी ढेर सारी होंगी कि जिन्हें देखकर पहले तो अम्मार यासिर हैरान हो गए, कहा कि इतनी सारी और इनकी तादाद कौन बताएगा? तो वो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना मुश्किल टास्क है कि हर कसो नाकस की बात नहीं, कोई खास होगा कि जो इसकी तादाद बता सकेगा, उसी खास का सवाल कर रहे हैं। कोई है ऐसा या अली जिसे आप जानते हो कि जो इन चूंटियों की तादाद बता सके, नंबर बता सके इनका? तो एक मरतबा मौला ने फरमाया कि हां, मैं एक ऐसे को जानता हूं कि जो चींटियों की तादाद भी बता सकता है, इन चींटियों की तादाद भी बता सकता है, और इन चींटियों में से नर कितने हैं, मादा कौन से हैं, वो भी बता सकता है। मैं ऐसे को जानता हूं। अब जब जनाबे अम्मार ने यह सुना तो कहा, मौला आप जानते हैं कौन है? कहा, तूने सूरह यासीन की वो आयत नहीं पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म रख दिया है इमाम मुबीन में। ऐ अम्मार, वो इमाम मुबीन कौन है? वो इमाम मुबीन मैं अली ही तो हूं। लिहाजा देख रहे क्या हुदूद इल्म मौला अमीर अलैहिस्सलाम है। कल आपने एक मिसाल समाअत फरमाई कि जहां पर हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था कल, कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने जनाबे जिब्रील अमीन को तालीम फरमाई है, उन्हें पढ़ाया है, उन्हें सिखाया है। आज आप देख रहे क्या नफकत चूटियों की तादाद बता रहे हैं मौलाए अमीर अलैहिस्सलाम, बल्कि कह रहे हैं कि इनमें से नर और मादा कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो भी अली बता सकता है। लिहाजा अब ये आप इसी आयत सूरह यासीन की इस आयत की तफसीर तफसीर अल बुरहान में निकाल कर देखिएगा और तफसीर नूरो सकलैन के अंदर निकाल कर देखिएगा, तो आपको ये रिवायत वहां पर मिल जाएगी कि जनाब अम्मार और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की इस एतबार से जो गुफ्तगू है वो वहां पर लिखी हुई रिवायत की शक्ल में। अब आ जाइए, आपको एक रिवायत और आपकी खिदमत में अर्ज करें, और वो रिवायत जनाब सलमान और मौला अमीर अलैहिस्सलाम की, और इसे लिखा है अल खराइज वल जरायह नामी किताब के अंदर कुतुबुद्दीन रावंदी ने, कुतुब रावंदी। और वो लिखते हैं कि अब वो तो वाकया सारा हम अभी आज तो हम बयान नहीं करेंगे, जनाब सलमान पर एक मुस्तकिल गुफ्तगू इंशाल्लाह होने वाली आगे के दिनों में, जिसमें सूरह नमल से मुतालिक कुछ आयतें हैं, 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, और उसका कुछ बयान आपकी खिदमत में आने वाला है इंशाल्लाह। लिहाजा अभी हम तफसील नहीं, अभी हम सिर्फ इजमाली तौर पे बहुत ही सरसरी हम गुजर रहे हैं, और मुख्तसर तरीन जनाब सुलेमान, नबी सुलेमान, हजरत सुलेमान के वसी और जानशीन का नाम क्या है? आसिफ बरखिया। आसिफ बरखिया तख्ते बिल्कीस लाना था मुल्क सबा से, इस तख्ते बिल्कीस को लेकर आए हैं आसिफ बरखिया मुल्क सबा से पलक झपकने की मुद्दत के अंदर अंदर, पलक झपक कर यानी आंखें बंद करके खोली हैं और तख्ते बिल्कीस वहां मौजूद था। मुल्क सबा और जहां पर हजरत सुलेमान मौजूद है इसके दरमियान कितना फासला है? 500 फरसख का फासला है, और ठीक ठाक माइल्स बनेंगे, ये 750 से ज्यादा ऊपर और ज्यादा माइल्स बनेंगे, 800 के करीब। इतना फासला, 500 फरसख का फासला है मुल्क सबा और जनाब सुलेमान के दरमियान, और पलक झपकने की स्पीड में वो तख्ते बिल्कीस को लेकर आ गए। अच्छा, उसका तरीका क्या था, क्यों लेकर आए? पहले ये क्योंकि उनके पास इल्म मिनल किताब था, यानी किताब के इल्म में से कुछ, यानी एक किताब का इल्म भी पूरा नहीं था आसिफ बरखिया के पास, और मौला अमीर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि जानते हो सलमान, जानते हो सलमान, ये आसिफ बरखिया जो कर पाए, क्यों कर पाए, एक किताब का इल्म था या उससे कम। हम अहले बैत के पास हजार किताबों का इल्म है, हमारे पास हजार किताबों का इल्म, इसमें आजम के कुल 73 हुरूफ हैं, उनमें से एक हर्फ जनाब आसिफ बरखिया के पास था, उसका इल्म रखते थे और ये काम अमल अंजाम दिया। हम अहले बैत के पास 72 है, 73 में से एक परवरदिगार आलम ने फकत अपने पास रखा, 73 में से 72 हुरूफ इसमें आजम के हमारे पास है, हम जानते उसका इल्म रखते। तो अब सोचिए उस इल्म की हद क्या होगी कि जो अगर आप रेशो बना लें तो 1:1000 और अगर आप रेशो बना लें तो 1:72, ये है रेशो इल्म का। हजरत सुलेमान की बात नहीं हो रही, हजरत सुलेमान के वसी की बात हो रही है, हजरत सुलेमान के वसी का इल्म और अहले बैत अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, मौला कायनात अलैहिस्सलाम का इल्म, और किस तरह से किया था जो खराइज वल जराइह के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब आसिफ बरखिया ने जमीन को तेजी से घुमाया और जैसे जमीन घूमी है वैसे वो तख्ते बिलकीस अपनी जगह पर आ गया, यहां जहां वो चाहते थे, और जब इन्होंने अपने पास तख्ते बिलकीस को ले लिया तो दोबारा से जमीन को घुमाकर अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर लाकर रोक दिया। ये जनाब आसिफ बरखिया का तसर्रुफ था, ये जनाब आसिफ बरखिया का इख्तियार था, जो उस इल्म की वजह से था कि जो इल्म अहले बैत के इल्म के मुकाबले में हजारवां हिस्सा है, उसका 1/1000 है, तो ये कर पाए। और अहले बैत था मौला अमीर अलैहिस्सलाम, अब जरा सोचिएगा, मौला अमीर जनाब सलमान से कह रहे हैं कि जब उनके पास यानी कि सुलेमान के वसी के पास ये इल्म था तो सोचो मोहम्मद मुस्तफा के वसी अली के पास जो इतना इल्म है, और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम कोई मौजजा दिखलाते हैं, तो अब मेरा यह सवाल है उम्मत से कि हम शक क्यों करते हैं। जनाब सुलेमान ने नबी के वसी का ये इख्तियार हम कबूल करते हैं, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी अली का इख्तियार क्यों कबूल नहीं करते, क्या कोई खास जाती नापसंदीदगी रखते हैं अली इब्न अबी तालिब से, नहीं मालूम, लेकिन मौला कायनात अलैहिस्सलाम का ये इख्तियार, उनका ये इल्म, आसिफ बरखिया का इल्म देख लिया, मौला कायनात अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ देख लिया, यही फर्क है। क्या फर्क है? इल्म का फर्क, मकाम का फर्क, मनसब का फर्क, मंजिलत का फर्क। हुरूफ इस्म आजम 72 अली के पास है, एक है आसिफ बरखिया के पास, किताब का इल्म, हजार किताब का इल्म अली के पास है, आसिफ इससे बरखिया के पास एक किताब का इल्म है। यही तो फर्क है कि वो जमीन को घुमाते हैं तो तख्ते बिलकीस पहुंचता है, और अली शहर कूफा के अंदर आज भी वो मकाम मौजज़ा अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा के अंदर मौजूद है कि जहां पर मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने वो मौजज़ा दिखलाया जिसे मकासिदुज़ ज़ायरीन में सैयद महमूद गुरैफी ने भी नकल किया अन रिवायतिन के मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, और जहां मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में जिस टुकड़े पर बैठे थे वहीं पर बैठे बैठे अली ने शाम की जानिब हाथ बढ़ाया, बर्फ चाहिए था मौला को और मजमे में कोई नहीं था कि जिसके पास बर्फ हो, और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम जहां तशरीफ फरमा है वहीं बैठे बैठे शाम की डायरेक्शन की तरफ, शाम की सिमत की तरफ बस हाथ बढ़ाया, और जब हाथ पलटा तो दस्ते यदुल्लाही अली के बने अभी तालिब अलैहि सलाम में बर्फ मौजूद था। जहां बैठे कोई जमीन घुमानी नहीं पड़ी अली को, इरादा, और बर्फ शाम के पहाड़ से उठाकर रख दी सरजमीन कूफा पर। अब जैसे ये मौजूदा, अब ये मौजूदा कहां लिखा हुआ है? मफातीहुल जिनान, आमाल मस्जिद कूफा का पोर्शन जो ज़ियारत मौला अमीर अलैहि सलाम के बाद आता है, और इस आमाल मस्जिद कूफा के पोर्शन में जब आप मकाम बैतो तश्त के आमाल पर पहुंचेंगे तो वहां पर यह तफसीली वाकया कि एक बच्ची है कि जो बजाहिर हामिला लग रही है और उसका इलाज करना है, इलाज बर्फ की ठंडक के अंदर मौजूद है और मौला अमीर अलैहिस्सलाम को बर्फ चाहिए, बर्फ वहां पर किसी के पास नहीं, तो अब बर्फ का इंतजाम कहां से हो? मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से किसी ने उठकर कहा कि या अली मैं शर्मिंदा हूं, इमाम मासूम हमारे ऊपर औला बे तसरुफ आप हैं, हम पर हक रखते हैं आप, आपने कुछ मांगा मैं आपको दे नहीं पा रहा, मुझे शर्मिंदगी है, अगर हम शाम में होते तो मैं वहां से लेकर आता, मेरा मुल्क शाम है वहां पर बर्फ सारा साल होती है, वहां से मैं आपको बर्फ ला कर दे देता पहाड़ों से। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम वहीं जहां बैठे तशरीफ फरमाए, वहीं से शाम की तरफ हाथ बढ़ाया, जब हाथ पलटाए तो मौलाए कायनात की दस्ते मुबारक पर बर्फ का टुकड़ा मौजूद था। अब यहां पर रुककर मैं फिर ब्रैकेट्स ओपन करना चाहता हूं आपकी इजाजत से, और ये मामला हुआ जब मौला ने मौजजा दिखलाया ना, तो वहां पर उस मजमे के अंदर भी वो अफराद मौजूद थे कि जो रूह से बीमार थे, कि जो ईमान के नक्स का शिकार थे, महरूम थे मारिफत ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, और उनका दिल इस वक्त कबूल नहीं कर रहा है मौला की फजीलत को, और शक कर रहे हैं ज़ाते अली की फजीलत में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपस में चेवी गोइयां करने लगे, कानों में कहने लगे एक दूसरे के आहिस्ता आहिस्ता विस्परिंग करके कि देखो मैं नहीं कहता था अली जादूगर है, कर दिया जादू, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मौला अमीर ने सुन लिया, मौला इतना बड़ा फैसला करने के लिए बैठे, उस बच्ची के भाई उसके कत्ल के इरादे से आकर रुके हुए कि फैसला हो तो पता चले कि अगर ये खातून ये हमारी बहन कल्प्रिट है और इसने जुर्म किया है तो हम इसे वहीं पर कत्ल कर देना, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसका इलाज रोका, इनकी तरफ मुतवज्जे हुए और तवज्जो करके फरमाने लगे कि खबरदार अबू तालिब के बेटे की फजीलत में शक न करना, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने वो इख्तियार दिया हुआ है अली इब्ने अबी तालिब को अलैहिस्सलाम कि जिस पहाड़ से बर्फ उठाकर कूफा में रखी है ना, अगर चाहूं तो उस पूरे के पूरे पहाड़ को शाम से उठाकर सरजमीन कूफा पर रख दूं तो भी ताज्जुब की बात ना होगी। इतनी ताकत है अली के दस्त मुबारक में, परवरदिगार आलम के दिए हुए इख्तियार में जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास है, उस तसर्रुफ के अंदर इतना सी ताकत है। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को बारगाहे रब्बे जुलजलाल से मिला हुआ है, लिहाजा वो क्या करें आसिफ बरखिया, जमीन को घुमाकर तख्त को अपने पास ले आए और अली जहां बैठे हो वहीं से बैठे बैठे हाथ बढ़ाएं, इरादा करें और बर्फ का टुकड़ा हाथों में आ जाए। लिहाजा इंसान अपने आप को इस बात से महफूज रखे कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की फजीलतों में इंसान शक करे। ये वो हस्तियां हैं कि जिन हस्तियों ने अपना सब कुछ रब्बे जुलजलाल के ऐन मशीयत के मुताबिक किया है, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अहले बैत अथार, मौलाए कायनात, रिसालत माब, इमाम हुसैन, बारह इमाम, चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम जो हमारे सैयद व सरदार हैं, इन्होंने अपनी मर्जियों को कुर्बान करके अल्लाह की मर्जी अपनी मर्जी बना ली। अब इनका कोई अमल सिवाय मर्जी परवरदिगार के और कुछ भी नहीं है, लिहाजा इनकी फजीलतों में शक ना किया करें, इनके मकाम मंजिलत को देखा करें और इनके तस्लीम को देखा करें कि ये रब्बे जुलजलाल की बारगाह में कैसे तस्लीम हो गए। जब इन्होंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया तो अब इनका हक था कि खुदा कहे कि मैं तुम्हें वो इख्तियार दूंगा कि जो तुम्हारी इताअत के मुताबिक है, जैसी इताअत तुमने की वैसा ही इख्तियार भी तुम्हें अता किया जाएगा। और ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनके मोहब्बत में कायनात परवरदिगार ने खल्की और इनका इख्तियार ये है भी। आप देख लीजिए, अगर और मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूं तो एक आध मिसाल और ले लीजिए और उसके बाद फिर हम आज की गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। जनाब हुराए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद क्या कहा, ऐ मेरे मौला क्या मुझ जैसे की भी माफी कबूल हो सकती है क्या? अब जरा ये सोचना कि हुसैन इब्ने अली सिर्फ हुसैन नहीं है, ये नुमाइंदा है परवरदिगार है जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह के हुक्म से माफ करेंगे अगर माफ कर रहे हैं, हुसैन खुद भी माफ कर रहे हैं तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये उसकी मशीयत के मुताबिक है, इसलिए कि ये उसकी मशीयत को ये उसके मिजाज को जानते हैं। ये उससे इतना करीब है कि जानते हैं कि परवरदिगार क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी मशीयत क्या है। आने वाले हुर को हुसैन ने देखा, कहा ए हुर सीने से लग जा, मैंने तुझे माफ किया, मैं भी तुझसे राजी, मेरा खुदा भी तुझसे राजी, मेरे नाना रसूल खुदा तुझसे राजी, मेरी मादर गिरामी जहरा तुझसे राजी, मेरे बाबा अली तुझसे राजी। क्या कहा? मैं तुझसे राजी, मेरा खुदा तुझसे राजी। ये अहले बैत अथहार का मकाम। मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम वो मशहूर मारूफ फातिहा कि जो कनीज मौला की खिदमत में वुजू का पानी एक बर्तन में रखकर लेकर आए, जिसे अरबी जबान में इब्रीक कहा जाता है, वाका अल इब्रीको अला वजहे, तो इमाम अलैहि सलाम के चेहरे अकदस पर वो बर्तन जिसमें वुजू का पानी था वो गिरा, और एक मरतबा मौला ने अपना चेहरा अकदस उठाया और सिर्फ उस कनीज को देखा है। कनीज ने फौरन से वो आयत पढ़ी कुरान करीम की, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुनफिकूना फिस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल्काज़मीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। इस आयत का ये टुकड़ा पढ़ा, वल्काज़मीनल ग़ैज़, गुस्से को रोक लिया करते हैं। मौला ने फरमाया कद कज़म तो ग़ैज़ी, मैंने अपने गुस्से को रोका। अभी मैं अपनी जानिब से कह रहा हूं, अगर सैयद सज्जाद गजबनाक हो जाए तो फिर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाता, अगर सैयद सज्जाद राजी हो जाए तो खुदा भी राजी हो जाता है। अच्छा, इसकी दलील के लिए अभी मैं आपकी खिदमत में जो जुमला आ रहा है वो पेश करता हूं, और फिर उसके बाद अब आयत का जो कंटिन्यूएशन है वो दूसरा टुकड़ा पड़ा, वल आफीना अन नास, इंसानों को माफ करते हैं। अब जुमला सुनेंगे मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम का, ये जो जुमला है ये अपील है, कनीज की अपील है, कुरान करीम की आयत के जरिए से अपील कर रही है, वल आफीना अन्नास, कि वो इंसानों को माफ करते हैं, आप भी मुझे माफ कर दें। मौला सैयद सज्जाद ने फरमाया कद अफल्लाहु अनकी, जा खुदा ने तुझे माफ किया। ये सवाल है कि माफी मांग किससे रही है? मौला सैयद सज्जाद से। माफी का कहा क्या जा रहा है कि तुझे किसने माफ कर दिया? खुदा ने माफ कर दिया। इसके माना यह हुए कि इनकी नाराजगी खुदा की नाराजगी है, इनकी रजामंदी खुदा की रजामंदी है। ये उसी वक्त होगा कि जब परवरदिगार इनसे इतना राजी हो कि ये कह दे कि फातिमा कौन है, रिसालत में आप खड़े होते हैं मस्जिद में, देखा लोगों ने कि अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो गए, साथ साथ चले, वो अजला सहाफी मजलिस ही, उस जगह बिठाया जो रसूल की अपनी मसनत थी, वहां आकर बिठाया। रसूल की मसनत पर बिठाना इसका क्या मतलब है ये फिर किसी और वक्त से, लेकिन जब लोगों ने इतना एहतराम देखा रसूल का, बारगाह इज्जत महाबे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में, तो सवाल करने पर मजबूर हो गई, या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी का इतना एहतराम कर रहे? कहा कि तू समझता है कि बाप अपनी बेटी का एहतराम कर रहा है? फातिमा वो है कि जिसकी रिजा में खुदा की रिजा है, इन्नल्लाहा ला यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यर्ज़ा लिरिज़ाहा, परवरदिगार आलम उससे नाराज होता है कि जिससे सैयदा नाराज हो जाए, और परवरदिगार उससे राजी है कि जिससे मेरी फातिमा राजी हो जाए सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा अब अपनी निगाहें इन पर टिका कर रखना, ये जिनसे राजी हो जाए उनसे राजी रहना, और जिनसे ये नाराज हो जाए उनसे राजी रहने की कोशिश ना करना, इसलिए कि इंसान उनसे कैसे राजी हो सकता है कि जिनसे खुदा नाराज हो। अब ये तो आपने देखा कि इमाम मासूम अलैहि सलाम, फिर यानी मौला हुसैन अलैहि सलाम का जनाब हुर को माफ करना, और ये कहना कि मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। मौला सैयद सज्जाद अलैहि सलाम का ये कहना कि अफल कद अफल्लाहु अनकी, अल्लाह ने तुझे माफी दे दी, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, अल्लाह ने तुझे माफ किया, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ये जुमला। अब आ जाइए हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का एक वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और यही हमारा ततिमा होगा आज का, कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के पास उनके भाई आए, उनके बरादरान आए, और आने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम गिल्टी फील कर रहे हैं कि हमने आपके साथ ये जुल्म किया और कुएं में धकेला और जो कुछ आपके साथ किया जुल्म वो किया हमने, अब आप हमें माफ करें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि देखो तुम फिक्र ना करो और बहुत ज्यादा ये जो तुम्हारा एहसास है नदामत है यही काफी है। लेकिन अब बहुत ज्यादा अपने आप को हल्का ना करो। मैं परवरदिगार आलम से दुआ करूंगा कि तुम्हें माफ करे और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मेरी दुआ को कबूल करेगा और तुम्हें माफ कर देगा। ये जुमला है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और उम्मीद करूंगा कि परवरदिगार आलम तुम्हें माफ कर देगा। जब बात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आती है तो वो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने भी माफ किया, जाओ मेरे खुदा ने भी माफ किया। मौला सैयद सज्जाद ये कहते हैं कद अफल्लाहु अनकी। और जब बात आती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहते हैं कि मैं तो दुआ करूंगा उसके बाद उम्मीद रखूंगा कि वो तुम्हें माफ करेगा। ये इख्तियारात अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम है कि जो मकामात और मंजिलतों के एतबार से फर्क करते हैं। यही वजह है कि जब बात आती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो वो अपने लिए शरफ समझते हैं कि अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाए। तो ये वो इख्तियार रखते हैं कि इनकी रजा खुदा की रजा है, इनकी नाराजगी खुदा की नाराजगी। और अगर इन्होंने माफ कर दिया किसी को तो गोया फिर हमारे पास हक नहीं है कि हम उसके बारे में कोई बात करें या कोई सवाल उठाएं या उसकी शान में गुस्ताखी करें। अगर अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माफ किया है, अब याद रखिएगा अपनी जानिब से कयास आराइयां नहीं चलेंगी। कोई जनाब हुर की शान में क्या गुस्ताखी करता है, कोई क्या गुस्ताखी करता। अपनी जुबान संभाल कर उठाइए इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि शान हुर अलैहिस्सलाम में गुस्ताखी हो जाए। वो हुर की जिसकी पेशानी पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मादर गरामी का रूमाल बांधा, जो सनद जमानत बन रहा है। लिहाजा जो मकामात हैं उनका ख्याल रखते हुए इंसान अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारे कि अब ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनकी ताजीम कायनात की उन चीजों ने किए कि जो जमाने नहीं रखती, जिनका शुमार इंसानों में नहीं आता। वरना पत्थरों का रोना, अंधेरे का छा जाना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर, सूरज को ऐसा गहन लगा है, रिवायतें बयान करती हैं सूरज को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ऐसा गहन लगा है कि लोगों ने दिन के वक्त में तारों की चमक को देख लिया। ऐसा जहां से पत्थर उठाइए शहादत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद खून जारी होता, आसमान खून रोया है। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो असर के वक्त सूरज की रोशनी होती थी उसका रंग सुर्ख होता था, लाल होता था। और आ जाइए एक दरख्त है औसजा का दरख्त। औसजा का दरख्त यानी कि कांटों वाली एक झाड़ी। जनाबे उम्मे खालिद एक खातून है के बिंतुल जौज वो ये कहती है कि मेरी खाला के खेमे में रिसालतमा आराम फरमाने के लिए तशरीफ लाए। और जब वो आराम फरमाई, मख्तले खारिज़मी की रिवायत, वो कहती है कि जब मेरे खाला के खेमे में हुजूर सरवरे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन आराम फरमा रहे, जब रिसालत माब रुखसत हो रहे, आराम फरमा लिया रुखसत हो रहे, तो जाते जाते हुजूर अकरम ने अपने दस्ते मुबारक को साफ किया पानी से और दहने मुबारक में पानी रखकर कुल्ली फरमाई और वो पानी रिसालत माब ने झाड़ियों वाली कांटों वाली झाड़ी थी जिसे औसजा का दरख्त कहा जाता है उसमें डाल दी और वो पानी रिसालत माब के दहन से निकलकर उस झाड़ी के उस झाड़ियों के अंदर पहुंच गया। रिसालत माब के दस्ते मुबारक का धोवन उस झाड़ी के अंदर पहुंचा और उसके बाद देखते ही देखते वो तनावर दरख्त की सूरत और शक्ल इख्तियार कर गया, यहां तक के उसमें सुर्ख रंग का फल लगा जिसकी खुशबू अंबर की खुशबू के जैसी थी। سرسبز و شاداب, بڑا اس کا تنا اور لال رنگ کا سرخ رنگ کا پھل, امبر کی خوشبو, شہد جتنا میٹھا وہ پھل کھانے میں تھا. جو بھوکا اسے کھاتا تھا سیر ہو جاتا تھا, جو پیاسا اسے کھاتا تھا سیراب ہو جاتا تھا, اگر کوئی مریض اسے کھا لیتا تھا تو شفا اسے مل جاتی تھی. لوگ دور دراز کے علاقے سے آتے تھے سفر اختیار کر کے اور اس درخت کے پھل سے اور اس کے پتوں سے استفادہ کرتے تھے اور شفا پاتے تھے. یہاں تک کہ حضور سرور کائنات جب تشریف لے گئے تو یہ سلسلہ جو اس درخت سے فیض جاری ہو رہا تھا, فیض رسالت ماں, وہ جاری ہوتا رہا, چلتا رہا وہ فیض. یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک دن دیکھا کہ وہ درخت, اس کے پتے پیلے ہوئے اور وہ درخت مرجھا گیا اور اس کے پھل گر گئے. یہاں تک کہ انہیں خبر ملی کہ حضور سرور کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جناب سیدہ کے بابا اس دنیا کو الوداع کہہ کر پردہ فرما گئے. لیکن پھر پھل پلٹ آئے اور پتے وغیرہ اس پر پہلے کی طرح سے پلٹ آئے اور لوگ اس سے استفادہ جاری رکھتے رہے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ دوبارہ سے درخت میں کانٹے نکل آئے, پتے پیلے ہو کر جڑ گئے اور پھل گر گئے, اور خبر ملی کہ مولا کائنات علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس دن کے بعد پھر پھل اس درخت پر نہیں لگا اور لوگ صرف اس کے پتوں سے استفادہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک ایسا دن آیا کہ اس کے تنے سے, اس کا جو سٹیم ہوتا ہے, اس کے تنے سے خون جاری ہونے لگا, اور اتنا خون جاری ہوا کہ یہ لوگ, اہل محلہ, اہل قریا, گاؤں والے لوگ, یہ خوف زدہ ہو گئے کہ کیا ہوا آخر ایسا. اور اسی اسنا میں انہیں خبر ملی کہ رسول کا نواسا فرزند رسول حسین ابن علی کی شہادت واقع ہو گئی. اور پھر اس دن کے بعد یہ درخت ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ دوبارہ سے انہی خاردار جھاڑیوں کے اندر تبدیل ہو گیا. یہ اثر لیا ایک ایسے درخت نے کہ جو رسول کے لعاب دہن, رسول کے دہن مبارک, رسول کے ہاتھوں کے دھوون کے فیض سے جاری ہوا تھا. اب ذرا مجھے سوچئے, اب ذرا سوچ کر مجھے بتلائیے, جب ایک درخت پر یہ آثار وضعی ظاہر ہو رہے ہیں تو سوچئے ملائکہ پر اس کے کیا اثر ہوئے ہوں گے, اس کا کیا اثر ہوا ہوگا. سورج پر جو اثر ہوا وہ آپ نے سنا, پتھروں پر جو اثر ہوا وہ آپ نے سنا, زمین خون اگلنے لگی, یہ ایک اثر ہوا. عزیزو, حسین پر رونے والے, حسین کے عاشقوں پر کتنا اثر ہوتا ہے. آج بھی جب مولا کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں, وہ کیفیت شہادت کو جو بیان ہوتا ہے انسان سن نہیں پاتا. یہ سب سنیں اور دیکھیں اور ان پر اثر ہو, ذرا سوچئے, یہی وہ حسین کی جن کی غریبہ ماں, جن کی مظلومہ ماں وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی اور سامنے حسین بیٹے کا گلا کٹ رہا تھا, ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی, اور ذرا سوچئے اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس بہن نے تیلائے تلائے تلائے زینبیہ پر کھڑے ہو کر یہ دیکھا تھا کہ بھائی حسین کے گلے پر شمر خنجر چلا, اور اس کے بعد مدینہ کی طرف رخ کر کے یہی تو کہا تھا بی بی نے کہ نانا آئیے ذرا دیکھیے, اپنے حسین کو دیکھیے کہ کس عالم میں امت نے کیا سلوک کیا آپ کے حسین. اور کبھی کٹے سر کو دیکھ کر فرماتی ہیں بی بی بنت علی, جبل الصبر, صبر کی پہاڑ بی بی, کہتی ہے انت اخی الحسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین. ارے آخر جناب زینب پہچانے تو کیسے پہچانے, کٹا ہوا سر ہے, ریش مبارک خون میں تر ہے, پیشانی پر زخم لگا ہوا ہے, پورا کا پورا چہرہ خون میں بھرا ہوا ہے, نوک نیزہ کی بلندی پر حسین ابن علی کا سر. بہن پہچانے تو کیسے پہچانے. مگر عزیزو, بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک جملہ مصائب کا اور اس کے بعد پھر ختم ہو دعا. جنگ احد میں حضرت حمزہ کا سینہ چاک ہوا, कलेजे को निकाला गया और कलेजे को चबाया गया। अल्लाह हू अकबर। अब जरा सोचिए कि लाश हमजा किस आलम में रही होगी। इतने में रसूल को खबर मिली कि हमजा की बहन जनाब सफिया को पता चल गया है कि उनके भाई को शहीद कर दिया है और इस जुल्म के साथ शहीद किया है कि सीना चाक करके कलेजा निकाला गया और कलेजे को चबाया गया। जैसे ही जनाब सफिया को यह खबर मिली, कहा मैं अपने भाई के जनाजे पर आकर रोना चाहती हूं। रसूल ने जैसे ही खबर को सुना तो अपनी अबा को उतारा, एक सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाकर हमजा पर यह चादर डाल दो, मेरी अबा डाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि बहन अपने भाई को इस आलम में देख ले। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा या रसूल अल्लाह आइए करबला आइए, जरा आकर अपनी कोई अबा साथ लेकर आइए, इसलिए कि बहन जैनब तिल्ले पर खड़ी देख रही है, अरे शिमर के हाथों में कुंद खंजर चमक रहा है, शिमर ने दाढ़ी को मजबूती से थामा हुआ है, अरे कहीं ऐसा ना हो कि बहन अपने भाई का यह खूनी मंजर देखे, या रसूल अल्लाह को यह अबा लाइए और अपने हुसैन पर डाल। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौम الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اول محمد ايم قلب ينقلبون पारे इलाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हमारे तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा से दरगुजर फरमा। हमारे दिलों में मवद्दत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का चराग ऐसे रोशन फरमा कि हमारी नस्लों में मवद्दत अहले बैत का पैगाम जारी और सारी रहे। पारे इलाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाह मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।